गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा के स्वरूप श्री 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 स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज स्वामी अखंडानंद जी महाराज को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। तीन श्लोक पढ़ेंगे, 29, 30 और 31। समूहं सर्वभूतेषु, न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मयि ते तेषु चाप्यहम्, अपि चेत् सुदुराचारः, भजन्ते माम् अनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः, सम्यग् व्यवसितो हि सः, क्षिप्रम् भवति धर्मात्मा, शश्वच्छान्तिम् निगच्छति, कान्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्त प्रणश्यति, हरिः ओम्। समः अहम् सर्वभूतेषु, न मे द्वेष्यः अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु माम् भक्त्या, मयि ते तेषु च अपि अहम्। अहम् का अर्थ है मैं सर्वभूतेषु, सर्वभूतों में समः, समभाव से व्यापक हूँ। न न कोई, मैं मेरा, द्वेष्यः अप्रिय अस्ति है, न प्रिय है, परंतु जो माम मेरे को भक्त्या प्रेम से भजंती भजते हैं, वे मई मेरे में और अहम में भी तेषु उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाक, साधु एव सह मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितः हि सः। चेत् यदि सुदुराचारः, ओ देखिए होता है दुराचारः, एक है सुदुराचार, एक गुंडा, एक पक्का गुंडा, नारायण नारायण, सुदुराचारः अतिशय दुराचारी, अपि भी अनन्य अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, जय हो, माम मेरे को भजते भजता है, सह वह साधु एव ही मंतव्य मानने योग्य है, क्योंकि वह सम्यक व्यवसित यथार्थ निश्चय वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानी ही, न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम जल्दी ही, शीघ्र ही, शीघ्र बोलते हैं, धर्मात्मा भवती हो जाता है, शश्वत सदा रहने वाली शांति, परम शांति को निगच्छति प्राप्त होता है। कौन्तेय हे अर्जुन, तू प्रति निश्चय पूर्वक सत्य जानी ही, जान, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है। ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी विचार है, कोई असाधारण बात भगवान ने नहीं की है। वो कह दिया कि जीवन के संबंध में एक बड़ा बुनियादी प्रश्न है, हमारे जीवन के आचरणों के संबंध में। क्या कहा है कि आमूल रूप से एक मुश्किल क्या है हमारी, कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं रोज, तो लगता है हम समझते हैं, रोज पढ़ते रहने से हम समझते हैं। रात कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलने के लिए आए तो फोन तो किया नहीं था, बताया भी नहीं था, हम थे भी नहीं, तो दुखी होकर के एक घंटा बैठ के चले गए। लिखा कि परम भगवदीय पुण्य श्लोक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, हम आपसे मिलने के लिए आए, एक घंटा बैठे, मगर बड़े दुख की बात है कि प्रतीक्षा करके करके फिर हम चले गए। कल कोशिश करेंगे, नहीं तो हमें वो कहीं बाहर जाना है औरंगाबाद, नहीं मिल पाए तो कल कोशिश करेंगे। आपका अपना बच्चा, फिर एक सुंदर चेहरा बताया, हंसने वाला, ऐसा चित्र करके चला गया। हमने उनकी पिताजी को फोन किए, वो पिताजी को फोन किए तो वो तो नहीं मिले, वो बड़े सरकारी अधिकारी, 31 मार्च है ना, इसलिए रात में 1-2-3, सारा साल काम नहीं करते, अभी एक महीना में पूरा कर लेते हैं। फिर उनके माताजी को फोन किया, हाँ बिटवा बता रहे थे मिलने आए घंटा पर। हमने कहा बिटवा पढ़े लिखे हैं कि अंगूठा छाप है? तो पढ़े लिखे हैं, दो फोन तो हैं प्रेमपुरी जी में, दो फोन तो हमारे हैं। हाँ फोन करके आने से तो ठीक होता था, चलो ये बात भी बनी। और उन्होंने जो 10 लाइन की चिट्ठी लिखी उसके नीचे उन्होंने अपना फोन भी नहीं लिखा है। हाँ ये तो बड़ी गलती है, तो इतनी अक्कल नहीं है उनको, ये कोई पढ़ाया नहीं उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट में, ये क्या हिसाब करते हैं, दुनिया भर का घोटाला करते होंगे। ये एक बात में हम क्यों कह रहे हैं, हम रोज गीता पढ़ते हैं, पाठ भी कर लेते हैं, और पाठ करते करते इनके शब्दों से इतना परिचय हो जाता है, हम समझ गए ऐसा मान लेते, वैसे दिला नहीं जानते उसका, कक्को बारखड़ी इन्हें अंदर में कशी खबर न थी। हम समझते हैं, हम सब समझते हैं, व्हाट ए पिटी, कितने दुख का विषय है। भगवान क्या कह रहे थोड़ा देखो भाई, इतना दोहराते दोहराते हम समझते हैं कि हम सब समझ गए, काश इतना यह अर्थ इतना सरल होता गीता को समझना। देखिए वेद चार हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, वो चार वेदों के भी चार चार भाग हैं, ब्राह्मण संहिता आरण्यक उपनिषद, उपनिषद भी बहुत है, हजारों हैं। तो ईश के न कठमुंडक मांडुक ऐतरेय तैतरेय स्वेता स्वतर छांदोग्य मुंडक करके और बृहदारण्य करके प्रमुख 9-10, और उनको सार किया है, सर्व उपनिषद गाव दुग्धा गोपाल नंदना, वही तो पार्थो वत्स सुधीर भक्ता, उसका दूध बताए। तो वेद का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, तो ऐसे किट-किट समझ में आ जाएगा, बड़ा मुश्किल बात है। एक भ्रांति में बने हुए नहीं समझते। हो स्वामी चिन्मानंद जी महाराज बड़ा विनोद कर रहे थे, बोले मेरा ये यज्ञ रहा, तो यज्ञ माने जो 10 दिन बैठ के 2 घंटा रोज प्रवचन करते हैं, ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो किसी एक सज्जने का, स्वामी जी आई नो होल भगवद गीता, ओनली वन डाउट। हमने कहा यस, व्हाट्स दैट डाउट, ये दिस स्टांजा, व्हाट दिस स्टांजा, सर्व उपनिषद गावः, तमाम उपनिषद गाय हैं, दुग्धा गोपाल नंदना, ये कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने इनका दोहन किया। पार्थो वत्स, तो पार्थ वत्स, तो ये अर्जुन को बछड़ा बनाया, दुग्धम गीता अमृतम, वो उसका जो दूध निकला है वो गीता अमृत, में क्या डाउट है। नो व्हाट इज दिस दो गधा, तो स्वामी जी महाराज ने कहा आई एम फर्स्ट गधा एंड यू आर सेकंड गधा, क्या करना है। गीता की दुर्भाग्य से हमारी ऐसी समझ है, भगवान ने इन 3 श्लोकों में जो बात कही है बड़ी जबरदस्त बात कही है, गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या कहा है कि आचरण महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि विष्णु सहस्रनाम क्या कहते हैं, आचार है प्रभव धर्म,
आपका श्रेष्ठ धर्म जो है वो आचार है। वो ऐसा भी कहते हैं कि रामजी महाराज ने एक दिन वो पंचवटी में कहा, हे जनक नंदिनी, आपके चरण कितने सुंदर हैं, आपके चरणों के निकट रहते होते हमारे चरण भी सुंदर दिख रहे। तो भगवती ने जनक सुता जी ने कहा कि नहीं नहीं आर्य पुत्र, आप ही के चरण सुंदर हैं, आपके चरण के दर्शन करके इन चरणों से हमारे चरणों की शोभा है। नहीं देवी, नहीं प्रभु। अच्छा लक्ष्मण आइए, आप न्याय कीजिए, किसके चरण सुंदर हैं अधिक। लक्ष्मण ने कहा, आप दोनों के चरण आप दोनों के आचरण से सुंदर हैं। वो विष्णु सहस्रनाम कहते हैं आचार प्रभव धर्म रूढ़। यहां क्या कहा है कि आचरण का कोई महत्व नहीं, समथिंग वेरी सीरियस मैटर। क्या कृष्ण नशे में थोड़े थे? कृष्ण जागृत में जागृत थे, एक ऐसी अवस्था में थे हाँ, युद्ध के बीच में, जहां घंट नहीं बज रहे, शंख बज रहे हैं, चारों ओर घोड़े ही नहीं हिना रहे हैं, हाथियों की है, एक और 11 अक्षौणी सेना है, तो 7 अक्षौणी सेना है, उनके बीच में इतने ध्वजों के नीचे और कपित ध्वज हनुमान जी के नीचे बैठ करके, जो बुद्धिमताओं वरिष्ठम है हाँ, उन बुद्धि वालों का झंडा लेकर के कृष्ण कोई नशे में तो नहीं बोल रहे, कहते आचरण का कोई महत्व नहीं है। कृष्ण के मुंह से ऐसी बात सुनकर के हैरानगी तो होगी ही, आचरण महत्व नहीं है तो क्या महत्व है? अंतस महत्वपूर्ण है, आपका अंतकरण जो है। सब धर्म जैसा हम सोचते हैं कि आचरण पर ही हम जोर देते हैं, वे कहते हैं यह करो ये मत करो, अगर तुम्हारा सदाचरण होगा तो तुम प्रभु को उपलब्ध हो जाओगे। सदाचरण की बात तो ठीक ही मालूम पड़ती है, सदाचरण तो है सब आचरण अच्छा व्यवहार। कौन होगा जो कहेगा कि सदाचरण के बिना भी परमात्मा उपलब्ध हो सकता है? कृष्ण ही कह सकते हैं। जो कहेगा वो क्या कहेगा? अनैतिक जीवन भी, ध्यान दे फिर से, अनैतिक जीवन भी परमात्मा को उपलब्ध करा सकता है। अभी एक है राजनीति कहते हैं, नीति का नाम है धर्म। जिस राज्य संचार में नीति नहीं हो, धर्म नहीं हो, सदाचरण नहीं हो, राज्य नहीं टिकता है। और जो नीति है वही तो धर्म है, नीति है वही सदाचार है। तो नीति तो आधार है हम सब का, किंतु नीति आधार नहीं है। कृष्ण जो कहते हैं स्थिति बिल्कुल विपरीत है, सदाचरण से कोई परमात्मा को उपलब्ध होता हो ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। दिस कृष्ण स्टेटमेंट। क्या कहा है कि परमात्मा को उपलब्ध करने के लिए हाँ जरूर सदाचरण को उपलब्ध हो जाता है, जो परमात्मा को प्राप्त होगा वो सदाचरण को प्राप्त हो जाएगा। सदाचरण को प्राप्त करने वाला परमात्मा को प्राप्त करेगा ये जरूरी नहीं है। यहां परमात्मा की प्रतीति है, परमात्मा महत्त्व है, आचरण गौण है, आचरण की स्थिति निम्न है। होना भी यही चाहिए क्योंकि आचरण बाहर की घटना है, आचरण जो है वो बाहर की घटना है, प्रभु की अनुभूति वो आंतरिक अनुभूति है, वो घटना नहीं है, वो आंतरिक अनुभूति है। ध्यान दें, ज्ञान जो होता है वो एक होता है गुरु प्रदत्त ज्ञान, गुरुओं के द्वारा किया गया। दूसरा है ग्रंथ प्रदत्त ज्ञान, जो ग्रंथों के द्वारा प्राप्त होता है। तीसरा होता है अनुभवजन्य ज्ञान, जो खुद ने अनुभव किया है, आंखों से देखा है, कान से सुना है, हाथ पांव जले हैं हमारे अनुभव करते करते, तो हम कह सकते हैं आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ विथ ऑल मीन, आई एम नॉट इन ए डायलेमा, मैं एक भ्रांति में नहीं कह रहा हूं, मैंने खुद अनुभव किया है। आचरण अंतस से आता है, अंतस आचरण से नहीं आता है। मैं जो भी करता हूं वह मुझसे निकलता है, लेकिन मेरा होना मेरे करने से ही नहीं निकलता है, मेरा अस्तित्व मेरे करने के पहले है, वेरी एसेंशियल, पहले मेरा अस्तित्व है बाद में मेरा आचरण है। मेरे सब करने से ज्यादा अस्तित्व गहरा है, मेरा सब करना मेरे ऊपर फैले हुए पत्तों की भांति है, वो मेरी जड़ नहीं है, वो मेरी आत्मा नहीं है। एक लाक्षागृह तो बड़ा सुंदर भवन था, इतना सुंदर था, एक कन्या भी होती है विष कन्या, बहुत सुंदर होती है, किंतु जिसको भी आलिंगन करके चुम्बन दे दे वो मर जाएगा, वो खाली हाथ पकड़ के यहां काट ले तब भी मर जाएगा। बहुत मुश्किल बात है इस वस्तु विषय को समझना। इसलिए यह भी हो सकता है कि मेरा कर्म मेरे संबंध में जो हो उसकी मेरी आत्मा एक बार कोशिश करना, गंभीरता से, तमाशे के लिए नहीं, कोई भी ना हो तब शीशे के साथ में दर्पण के सामने खड़े हो जाना और पूछना, हाउ डू यू फाइंड मी, पूछना आपको मैं कैसे लगता हूं, क्योंकि वो जानता है आप कैसे हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, साधु को दिने बेलाए देखते होवे, रात्रि बेलाए देखते होवे, साधु को दिन में भी देखना, रात में भी देखना, अकेले में भी देखना और समूह में भी देखना। हम ऋषिकेश 25 साल तक रहे, लोग बाग कहते रहे, या बंबई से भी काफी साल से, 1974 से मैंने आकर के मराड़ में रुकता था 15-15, 20-20 दिन, तो लोग कहते हैं स्वामी जी हम आपके आश्रम में आकर रुकना चाहते हैं। मैं कहता हूं गर्मी में आओ, सर्दी में आओ, बारिश में आओ, उत्सव में आओ, बिना उत्सव के आओ, जब बड़े महाराज जी आश्रम है तब आओ, जब बड़े महाराज जी आश्रम में नहीं रहेंगे तब आओ, और थोड़ा दिन देखो आप एडजस्ट कर पाओगे क्या, क्योंकि आप बंबई में रहते हैं या आप दिल्ली में रहते हैं, आपके यहां भोजन में रोज दो सब्जियां बनती है, दाल अलग अलग तरह की बनती है, किस दिन आप सब्जियां खाते ही नहीं हो, दाल सब्जी खाते नहीं हो, आप छोले पूड़ी से गुजरा करते हो, कभी एक दिन है ना भेलपूड़ी खा लेते हो, तो ये आश्रम में तो 300 से एकादशी को छोड़ करके, नवरात्रि की संध्याओं को छोड़ करके, शिवरात्रि को छोड़ के, जन्माष्टमी रामनवमी 365 दिन खिचड़ी मिलती है, रोटी में घी नहीं होता है, और मूंग की दाल होती है छिलके वाली, और नहीं तो उड़द की दाल होती है, तो 365 दिन खिचड़ी और जिस रोटी के ऊपर घी नहीं हो, तो ये ऐसे करके आप कितना दिन तक गुजारा करेंगे। और गर्मी में बंबई अलग है, कानपुर अलग है, बेंगलोर अलग है, दिल्ली अलग है, आश्रम अलग है, पहाड़ों में चढ़ना है उतरना है, बंबई में बिजली जाती ही नहीं, उत्तर प्रदेश में आती ही नहीं, ये भी एक बात है, यू टू एडजस्ट। हाँ, आपको वहां पर ब्रेड नहीं मिलेगा, टोस्ट नहीं, आश्रमों में ब्रेड आती ही नहीं है, पाव भाजी नहीं होगी, बड़ा बड़ा नहीं होगा, तो क्या करोगे, क्योंकि आपने अपने जीवन को एक 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल तक एकदम एक ढांचे में डाला है, आकस्मिक उसको परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल। आपको तो कोल्ड कॉफी चाहिए, मेरे को आइसक्रीम चाहिए, तो देहरादून जाना पड़ेगा, टैक्सी लेके जा, खा करके आ, उधर बहुत रॉयल सब इंग्लिश स्टाइल के सारे क्लब है, ऋषिकेश में तो अब काफी कुछ हो गया है, पहले तो नहीं था। तो क्या कहने का तात्पर्य है, हम जानते हैं कि हम पूरे आपके सामने साधु का आचरण करते हैं, साधु का ध्यान दें, क्या अंडरलाइन, क्या करते हैं, आचरण माने व्यवहार करते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं, प्रेम से बोलते हैं, आए तो ठीक है ऐसा कहते हैं, प्रसाद भी देते हैं, कोई प्रणाम करना महाराज जी पांव दीजिए, ठीक है ठीक, नहीं दीजिए, ठीक है ठीक, अच्छा लीजिए चलो ऐसा करेंगे, वो तमाम बात कर सकते हैं, पैसे दिए तो उठाए नहीं, वो सब बात नाटक अभिनय कर सकते हैं, किंतु भीतर कितनी असाधुता है उसका बैरोमीटर आपके पास में नहीं है। बड़ा मुश्किल प्रश्न है ये, क्यों कृष्ण भगवान ने क्रांति की अलार्म दिया है, संत समाज के लिए भी उतना ही गंभीर बात है, उतनी गंभीर ये कथन की स्थिति है जितनी सर्वसाधारण के लिए। हम जानते हैं कि बिल्कुल का साधारण आचरण मैं खुद कर सकता हूं, किंतु भीतर में पूरा असाधु हो सकता हूं, इसमें कोई बहुत अड़चन नहीं, क्योंकि आचरण की व्यवस्था की बात है, मेरा भीतर कितना ही झूठ हो किंतु मैं सच बोल सकता हूं, इतना अभिनय कर सकता हूं, आपको कोई अड़चन नहीं होगी। आप कहेंगे इनके समान कोई संत ही नहीं है, मैं अहिंसक हो सकता हूं, बल्कि दिखाई पड़ता हूं जिसको ऐसा नहीं, हिंसा के ढेर पर बैठा हो सकता हूं। यह हो सकता है कि हमारा क्रोध बाहर से प्रकट न होता हो, किंतु मेरे भीतर जो एक अग्नि की ज्वाला जली हुई है उसको तुम नहीं देख पाओगे। क्रोध जो है वो मेरे लिए कितना खतरा है वो मुझको पता है, आपसे अधिक तो मुझको अपना खतरा है, फिर भी उस क्रोध को हम दबा करके रखते हैं। क्यों? अपनी साधुता का प्रदर्शन करने के लिए। दर्शन अलग है, प्रदर्शन अलग है। प्रदर्शन दिखावा है, दर्शन अनुभूति है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि छोटे मोटे क्रोधी कभी क्रोध नहीं दबाते, ये बहुत जरूरी बात है। छोटे मोटे क्रोधी हैं वो कभी क्रोध नहीं दबाते ना, बड़े क्रोधी तो को क्रोध दबाना ही पड़ता है, क्योंकि जिंदगी असंभव हो जाएगी, जीना ही दुस्तर हो जाएगा, बड़े क्रोधी को क्रोध दबाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं साइन क्वा नन, यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ इट, साइन क्वा नन, इट्स वेरी एसेंशियल अंडरमार्क, स्ट्रगल 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 इज द साइन क्वा नन ऑफ लाइफ एंड स्टेग्नेशन इज अ डेथ, संघर्ष ही जीवन है, स्थगितता मृत्यु है। यू कांट संघर्ष वगैरह जीवन थीच ना सके, साइन क्वा नन इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, इट मस्ट बी लाइक दैट ओनली। सो व्हाट दे से सो कि भाई क्या बात है, बड़े बड़े क्रोधी आचरण से धोखा दिया जा सकता है, लोगों की आंखों को हो सकता है, लेकिन वह धोखा स्वयं को धोखा जो देना चाहो तो नहीं दे सकते हो, बड़ा मुश्किल काम है नारायण। नीति का संबंध दूसरे को धोखा न देने से है, धर्म का संबंध स्वयं को धोखा न देने से है, नीति का संबंध समाज की आंखों में शुभ होने से है, धर्म का संबंध परमात्मा के सामने शुभ होने से है। नैतिक होना आसान है, ध्यान दें, नैतिक होना आसान है। यह सच तो है कि अनैतिक होने में जितनी कठिनाइयां होती हैं, आदमी को नैतिक होना ही पड़ता है। टू बी ए नैतिक इज मच मोर इजियर देन अनैतिक, क्योंकि धार्मिक होना कठिन है, ये बड़ा मुश्किल काम है, धार्मिक होना बहुत कठिन है। धार्मिक न होने से कोई अड़चन नहीं है, अब पैंट शर्ट पहनो क्या मुश्किल है, मगर पैंट शर्ट छोड़कर के धोती पहन लो, एक हरे कृष्ण वालों के जैसा नाक तक एक तिलक डाल लो, हाथ में हरे कृष्ण रख लो, ये जाकर के आप रास्ते में कहीं भी भेलपुड़ी खा सकते हो, और नाक तक तिलक डाल करके हाथ में वो लेकर के खा सकते हो क्या? नारायण, ओ अधार्मिक बनना बड़ा सरल है, धार्मिक बनना बहुत ही कठिन है नारायण। धार्मिक होकर के जीवन यापन करना बड़ा दुस्साहस है। धार्मिक होकर जीने का अर्थ है मेरे जीवन का नियम मेरे भीतर से निकलेगा, अब इस जगत का कोई भी नियम मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं अपने जीवन में हूं, अब मैं ही अपना जीवन हूं, मैं ही अपना नियम हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। ये प्रमुख स्वामी जी महाराज हैं, तो योगी जी महाराज ने उनको कहा, पहली बार जब ये विदेश गए तो कहा देखो हिंदुस्तान में पानी पी करके जाना, फिर जहां पहुंचो वहां मंदिर में स्नान करके पानी पीना, रास्ते में कुछ खाने पीने का व्यवहार नहीं करना। वो यहां से वो नैरोबी गए तो पूरा रास्ता पानी नहीं पिया ना। अब इनका नियम क्या है, रात में 12 बजे सो जाना, 4 बजे उठ जाना, तो 12 बजे तक भी, और 4 बजे तो ठीक फिर से हवाई जहाज में इंसान लंबे पांव करके सो सकता है एग्जीक्यूटिव क्लास में, और कोई उठाने वाला भी नहीं है जब तक आपकी फ्लाइट नीचे नहीं आएगी तब तक, कुर्सी सीधे करने को नहीं तो, किंतु मेरे को योगी महाराज ने नियम दिया है मैं कैसे तोड़ू, इतनी उम्र तक अभी 90 साल के होने तक भी यह नियम। इसलिए अभी उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज जी को थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा में लेके जाओ, एक साथ में इतना लंबा नहीं लेके जाओ, क्योंकि उनको आहार नहीं जल नहीं उनकी अवस्था में उचित नहीं, मेरे गुरु ने कहा है तो मुझको उसको पकड़ के रखना। गुरु की बात, गुरु आज्ञाम न विचारणीयम, गुरु की आज्ञा को मैं उसको कोई उल्टी उचित नहीं कर सकता, क्योंकि धार्मिक होकर जीना अत्यंत कठिन है और सबके गुरु होकर जीना तो और भी मुश्किल, क्योंकि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो आपका जीवन सबके लिए खुला है। आपको देखकर के आपके शिष्य, आपके भक्त, आपका समुदाय, इन तमाम सबको कुछ यही तो दर्शन होगा, शिक्षा उनको मिलेगी आपको देखकर के। धार्मिक होकर जीने का परिणाम भुगतना पड़ता है। जीसस को सूली लग गई, सोक्रेटिस है उसको भी जहर दे दिया गया, महावीर के कान में कांटे भोंके गए, बुद्ध को भी जहर दिया गया, महात्मा गांधी को गोली मार दी गई, अब्राहम लिंकन को गोली मारी गई, राम का वनवास हो गया और कृष्ण को लोगों ने चोर कहा और खूनी भी कहा। कृष्ण को, राम को, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, सोक्रेटिस, जीसस, तो हम फिर पांडव लोग हैं उनको देखो भाई, एक धर्म का पुत्र है, एक इंद्र का पुत्र है, एक वायु का पुत्र है, दो अश्विनी कुमार की पुत्री, वो द्रौपदी अग्नि की पुत्री है, कृष्ण उनके मामा के बेटे लगते हैं, ये इनके बुआ के बेटे लगते हैं, इन्होंने कितना दुख भोगा है। धार्मिक होकर जीने का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा, ध्यान रहे। अनैतिक होकर के भी जीना बहुत कठिन है, अनैतिक होकर के, क्योंकि अनैतिक होते ही आप समाज के संघर्ष में पड़ जाएंगे, एकदम गड़बड़ हो जाएगा। कानून है, अदालत है, पुलिस है, ये यहां से द्वारकाधीश मंदिर जाते हैं ना, तो एक सीधा चले जाओ, बाबा जी बैठते हैं नीचे वो साइकिल वाले, वहां से रास्ता क्रॉस करना पड़ता है। मैं 15-20 मिनट तक खड़ा रहता हूं, क्यों, वो जब तक कार आना नहीं बंद हो लोग भाग रहे, ऐसे ऐसे करके भागते, वो नैतिक है कि अनैतिक है, वो तो अनैतिक है, वो अनैतिक है, फिर भी उनको क्या है, एक्सीडेंट होने का भय है कि नहीं है, थोड़ा ध्यान न रहे, अपनी साड़ी अपना दुपट्टा पांव में आ गया तो गिर सकते हैं। अनैतिक होकर के जीना भी मुश्किल है, कानून है, अदालत है, पुलिस, अनैतिक होते ही आप समाज के साथ संघर्ष में, क्योंकि वो आप निकल रहे हो गाड़ी वालों को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। अनैतिक होकर जीना दुष्कर है, धार्मिक होकर जीना भी मुश्किल है, क्योंकि धार्मिक होते ही आप स्वतंत्र जीवन शुरू कर देते हैं और अनैतिकता से इसलिए कठिनाई आती है कि आप दूसरों के हितों को नुकसान करते हैं। लाइन में खड़े रहे और रेलवे की टिकट लेने के लिए, तो अगर आप लाइन से बाहर निकल करके सीधा काउंटर में हाथ डाल लें, वो लाइन रहेगी कि टूट जाएगी, साहब लाइन छोड़ देंगे आपको सिर में हाथ पांव मारने के लिए, बड़ा मुश्किल काम है। तो ये अनैतिक जब हम होते हैं तो समाज को नुकसान करते हैं, तो आप कठिनाई में पड़ेंगे। धार्मिक होने से इसलिए कठिनाई आती है कि आप दूसरों को मानना ही बंद कर देते हैं, ऐसे जीते हैं जैसे पृथ्वी में आप अकेले हैं, अपने आप जो मैं करता हूं ठीक है, समाज को ये पसंद हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 1974 में हम भारतीय विद्या भवन में भाई शंकर भाई के पास में संस्कृत पढ़ने आए थे, हमारे गेरू कपड़े हैं, हमारे साथ में एक ब्रह्मचारी रहे, उनके पीले कपड़े, उनकी चोटी भी थी, तो इन दोनों में ये हरे कृष्ण का बड़ा बोलबाला था, ये नया नया मंदिर जुहू में बना था, हम कहीं भी जाएं तो लोग हरे कृष्ण ऐसा करके सम्मान करके हमको बैठा देते, उठा देते, अभी कहेंगे तो बोलते हैं जय स्वामीनारायण, हरे कृष्ण भूल गए, जय स्वामीनारायण भूल गए, हमें क्या तकलीफ है, मगर उनके दिमाग में है कि हरे कृष्ण है नहीं तो ये स्वामीनारायण है, तो हरे कृष्ण का ऐसा व्यवहार होना चाहिए, स्वामीनारायण का ऐसा व्यवहार होना चाहिए, नहीं है तो कुछ गड़बड़ है, तो ये फैंसी ड्रेस है, ये नाटक का पात्र है। इसलिए जब हम कोई धार्मिक जीवन जीना, क्योंकि पूरा समाज जो है वो तो धार्मिक जीवन की रति गति में है नहीं है, तो इसलिए अगर आप जीते हैं तो लगता है कि आप बिल्कुल अकेले चलते हैं। नैतिकता अक्सर चालाकी का हिस्सा बन जाती है। हम नैतिक रखे तो बोले हम बड़ा चालाक है। अरे वो चालाकी है क्या? आई वॉन्ट टू लीव ए स्ट्रेट लाइन, होता नहीं। धर्म भोलेपन का परिणाम है, निर्दोषता का, नैतिकता की चालाकी का, हिसाब का, कैलकुलेशन का। अहमदाबाद में गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 50 साल पूरे हुए तो बहुत बड़ी सभा हुई, पुरानी बात है। तो स्पीकर रहे, पार्लियामेंट से आए थे, और यशवंत सिन्हा वो हमारे उन दिनों में मिनिस्टर रहे, वो भी आए थे। हमको कीनोट एड्रेस के लिए बुलाया गया था। दो तीन और बड़े बिजनेस लोग भी रहे, और निर्मा के कजन भाई पटेल इत्यादि। हमारे पूर्व का जो वक्ता रहा, उन्होंने ये कहा, पूछो इन स्वामी जी महाराज से, मैं तो नया नया आया था, मेरे को 6 महीने भी नहीं हुए थे अहमदाबाद में आकर के, घोड़े कबाड़ के ऊपर रहता था मैंने, पूछो इन स्वामी जी से, इनके आश्रम को चलाने के लिए पैसा कौन देता है? अगर ब्लैक मार्केट या काला बाजार वाले पैसा ना दे तो आश्रम चलेंगे कैसे? काले धन से ही सारे आश्रम चलते हैं, पूछिए ये सारे धर्म संस्थान। और हमको कहा जाता है कि हम ब्लैक मार्केट ना करें, बिना ब्लैक मार्केट किए कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता है। वो ऐसा उनको जो रुचि में आ गया बोला, हमें क्या बोलना है, मैं उनको जानता नहीं क्या है, जो बोला बोल। उनका बोली बहुत अनुचित था बोलना उनका, मगर बोल दिया उन्होंने। जब मुझे बोलने का हुआ, मैंने कहा देखिए मैं अहमदाबाद में आ रहा हूं कोई 1986 से, जिस सज्जन के घर में मैं रुकता हूं उनकी टोपी में भी कोई लकीर नहीं है, कपड़ों में भी नहीं है, गुजराती में बोले यानी टोपी में के कपड़ा में कोई सौर न थे। और उन्होंने मेरे हाथ से 10 लाख 20 लाख 25 लाख का दान कराया है, पूरा चेक देकर के। और उनकी जो इंसानियत है, उनकी पवित्रता है, धंधे में उनकी जो सही मायने की काम करने की नीति का मैं एक दृष्टांत देता हूं कि वो आपके ही शहर के हो, जिसका नाम बोलूंगा तो आप सब बोलेंगे कि हाँ हम उनको जानते हैं। जिनकी मृत्यु हुई वो इंदिरा गांधी जी के पीछे कितना जुलूस चला था, इतने लोग उनके पीछे गए थे। दास का पुरुषोत्तम दास सोमा भाई पटेल, ये इनका नाम। हमने कहा हम यहां से अहमदाबाद से दिल्ली जा रहे थे, 3 लोग यहां बैठते हैं, 3 लोग वहां बैठते हैं, तो उनके बीच में मैं रहा, बाकी 5 लोगों ने शराब पी हुई थी, यंग थे, युवक थे, शराब पी हुई है, उच्छृंखल थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे, हर दूसरी मिनट में घंटी बजा करके एयर होस्टेस कन्या को बुलाते थे और आकर के कुछ बेहुदा व्यवहार करते थे, ये लाओ कुछ कुछ करो, कुछ कुछ कमेंट करते थे। मैं उनके बीच में बैठा हूं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जब हो गए, हवाई जहाज ऊपर चली गई, सब स्थिर होने लगा, इनका व्यवहार में कोई फर्क नहीं हुआ। तो मैंने धीरे से पूछा इनको, आप लोग कपड़े के व्यापारी हो? हाँ महाराज जी, आपको धोती वोती चाहिए तो कहिए, हाँ बिल्कुल दिलवा देंगे, कहिए आपका एड्रेस दीजिए, भिजवा देंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, हमारा तो अपना ही कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार। अच्छा कहाँ है? हमने कहा न्यू क्लोथ मार्केट 111। एकदम उनको जैसे शॉक लगा है, अरे वो तो श्यामू का है, श्यामू मेरा सबसे छोटा भाई है। उसकी बुधा तो दास का क्या? मैं बड़ा बेटा हूं। तीनों के तीन खड़े हो गए, मैं बड़ा हूं, मेरे से छोटा प्रवीण, फिर प्रकाश, बाद में ये श्यामू वगैरह नीचे हैं। तो उनकी चढ़ी हुई उतर गई। वो दिल्ली आने तक उन्होंने मेरे सामने तो नहीं देखा, उस एरोस्टेस तक को नहीं बुलाया। उनका एक ऐसा नेक इंसान है आपके समाज में, जिसके नाम मात्र से शराबी का नशा नीचे हो सकता है, क्योंकि उसके जीवन में चारित्र है। और आप लोग कहते हो कि चारित्र जीवन से धंधा नहीं होता है। आप सब पूछो अपने आप को कि वो कैसे उन्होंने जीवन यापन किया। कोई एक छोटी सी ये वाघण पोड़ कहते हैं, उसके अंदर में कपड़ा खोलना दिखाना, नहीं लेगा तो बंद करके रखना, यही काम करता रहा बंदा। और आज उसकी नेकी कितनी है। कोई एक सिनेमा लगा था, हम तुम्हारे कौन हैं, हम के आपके कौन हैं, हम कुछ हम आपके कौन, कोई सिनेमा तो टिकट नहीं मिल रहे थे, ब्लैक में मिलते थे 600-600 रुपए में। इस बंदे ने क्या किया, एक पूरा थिएटर ही बुक कर लिया, पूरा थिएटर, और अपने ये न्यू क्लोथ मार्केट वाले सभी व्यापारियों से कहा कि आपको कितना टिकट चाहिए, कितना टिकट चाहिए, कितना टिकट चाहिए, ले लो मेरे से फ्री में, और सबका खाने का बंदोबस्त भी वहां किया हुआ है। कौन सोचता है ऐसा? मैं क्यों कहता हूं इन बातों को, हम समझते हैं कि हमारा जीवन नीति का हो कि अनीति का हो, दोनों तरफ से मुश्किल है। वो कहते हैं स्वामी जी बहुत दुष्कर है, हम ये अनीति का काम नहीं कर सकते ना, कभी नहीं हमसे होता है। ध्यान रहे, अनैतिक होना कठिन है, नैतिकता अक्सर चालाकी है, धर्म भोलेपन का परिणाम है, निर्दोषता का, नैतिकता का, चालाकी का, हिसाब का। समझ ले अनैतिकता ना समझी का परिणाम है, अज्ञान का। ये जो साधु लोग होते हैं ना, साधु लोग, तो उनका साधुओं का भी संगठन होता है, अखाड़े। तो ये जूना अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, निर्वाणी अखाड़ा है, महानिर्वाणी अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, आह्वान अखाड़ा है, तो ये संगठन होते हैं। चोरों के भी संगठन होते हैं, किंतु ध्यान दें, चोर के संगठन ज्यादा संगठित है, साधुओं के संगठन संगठित नहीं है ना। तो कोई मुझे कहेंगे आप साधु हैं चोर की तरफदारी क्यों करते हो? ये मोहम्मद साहब है ना, मोहम्मद साहब, उनकी हजरत मोहम्मद पैगंबर के बेटी का नाम था हजरत फातिमा, उनके पति का नाम था हजरत अली, उनके दो संतान थे, का नाम था हजरत हुसैन हसन। ये जो हजरत हुसैन थे, उनके जीवन में जो इन्होंने एक बात लिखी है, बड़ी अद्भुत बात है। कहते हैं कि मैं एक दिन रात किसी एक गांव में गया, रात बहुत देर हो चुकी थी, कोई 12-1 बजा होगा, चलता चलता पहुंचा, फकीर ही था मैं तो। हजरत हुसैन कहते हैं कि धर्मशाला के मालिक ने कहा, हम तुम्हें जानते नहीं, कोई तुम्हारे बारे में कह दे कि इनको रख लो तो हम रखेंगे, बोनाफाइड करो पड़े, कोई कह दे। बोले भी रात 1 बजा है, अब मुझे कौन मिलेगा? ये मेरा प्रश्न नहीं है, अनजान आदमियों को हम नहीं रखते, हमारा नियम है। भाई ठंड बहुत है, आधी रात है, हम थक गए हैं, हम फकीर हैं, जो नियम है सो है, कोई तुम्हें बोनाफाइड कर दे, कह दे कि हम पहचानते हैं, चिंता मत करो, रख लो। मैं दुखी था, बोले मैं बाहर आ गया। उस समय मैंने देखा एक सज्जन जा रहे हैं, उनका भाई साहब रुकिए, क्या बात है, रात बहुत बीत गई है, ठंड भी बहुत है, मैं दुखी भी हूं, मुझको रात काटनी है। धर्मशाला वाला कहता है, कोई आपके लिए भरोसा दिला दे कि हम इनको जानते हैं, रखो चिंता मत करो, थोड़ा आप आइए ना। बोला मैं तो आपको जानता नहीं, कैसे भरोसा दिलाऊं, वो आपको पता है मैं कौन हूं? नहीं, अच्छे इंसान हो, जा रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो, धर्मशाला के चौकीदार ने, मैनेजर ने हमसे इतनी सदुकाई से बात नहीं की थी, उससे तो ज्यादा ही सज्जन दिखते हो। अरे मैं चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। आप ऐसा करो ना, मैं रात भर तो चोरी करने के लिए इधर उधर घूमता रहूंगा, सवेरे में दिन भर सोता रहता हूं, चलो मेरे घर चलो, पास में ही है, वहां रुक जाओ। हजरत हुसैन कहते हैं, मेरे लिए एक दो विडंबना है कि वो एक सज्जन कहलाने वाले मुझको रखते नहीं है, और चोर कहलाने वाला मुझको जानता नहीं, बुलाया हो, पूरा घर मुझे सौंप के जा रहा है, मैं किसको साधु कहूं बताओ। वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं चोर के घर में रुकूं कि नहीं रुकूं। और चोर ने कहा कि मैं वहां जाकर के कहूंगा तो मुझे पूछेंगे तुम क्या करते हो, तो मैं बोल दूंगा मैं तो चोर हूं, तो हल्ला मचा देगा वो, आपको तो रखेगा नहीं, मेरे को भी मुश्किल में डाल देगा। अच्छा है तुम मेरे ही घर में रुक जाओ। वो एक महीना हजरत हुसैन वहां रहे। रोज शाम को वो चोर जाता था, सुबह होते वापस आता था, आकर के चाय नाश्ता करके सो जाता था। वो सुबह होते जब आता था, हजरत हुसैन अपनी फजर की नमाज पूरी करके आते थे, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बोलते थे, तो बोले क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अरे रात भर तेरी बर्बाद हो गई, कल मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, रोज मिले ऐसा थोड़ा जरूरी है। एक महीने तक उसके चेहरे पर कोई ग्लानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई यातना नहीं। आज नहीं मिला तो एक दिन तो मिलेगा, ऐसा जोर का मिलेगा, अल्लाह देता है, छप्पर फाड़ के क्या होता है। एक महीने तक उसकी शांति देख के मुझे एक आश्चर्य हो गया, मैं अल्लाह की खोज में हूं। रोज नमाज अदा करता हूं, पांच की पांच नमाज पढ़ लेता हूं, रोजे भी कर लेता हूं, फित्र भी दे देता हूं, जकात भी दे देता हूं, हज भी कर लेता हूं, फिर भी मुझे अपने अल्लाह के मिलने का भरोसा नहीं है और उसको उसकी चोरी का चोर मिलने का भरोसा है। मुझे शिक्षा मिली, मैं बंदगी करता ही रहा और एक दिन मुझे खुदा है उसके दर्शन हो गए, खुदा मुझे मिल गए। तो मेरे शिष्यों ने मुझे पूछा कि तुम किस गुरु को शुक्र अदा करना चाहते हो? बोले वो चोर गुरु को मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उसके दिल में एक धैर्य था। श्रेयश्च प्रेयश्च तौ संपृक्त विविनक्ति धीरः। और श्रेय और प्रेय जो है वो इंसान को है, किंतु इंसान के दो गुण और हैं जिसको कहते हैं विविनक्ति धीरः, विवेक और धैर्य। बाकी आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशु भी नरणाम, आहार है निद्रा है भय मैथुन, ये तो पशु को भी है, तो इंसान को क्या बड़ी बात हुई। इंसान के लिए है विवेक है और धैर्य है। चोर में विवेक था, चोर में औदार्य था, चोर में इंसानियत थी, उसको मुझ पर भरोसा था। और वो जो भरोसा रखने वाले जिन्होंने धर्मशाला खोल रखी, वह पूरा अधर्म था। ये नहीं सोच सकता कि रात एक बजे इतनी कातिल ठंडी में ये फकीर जो है, मैंने तो कोई सूट बूट नहीं पहना था, फकीर का ही चोला था, तो फकीर को तो देखने से लोग जानेंगे फकीर, तो क्या वो साधु में भी वो असाधु को देख रहा था, और वो असाधु है वो साधु बना हुआ था। मैं किसको कहूं किसके धर्म में किसके मजहब के अंदर में ज्यादा रूहानियत है। हम धर्म के नाम पर रूहानियत से परे है, और वो अधर्म करते हुए भी रूहानियत से भरा हुआ है, किंतु अधर्म में वो पक्का है, ये अपने धर्म में कच्चे हैं। बहुत मुश्किल बात है। जब मैं परमात्मा को खोजने निकला, उस परम संपदा को खोजने निकला, न मालूम कितनी बार ऐसा लगता था कि सब बेकार है, कुछ मिलता है न, कोई परमात्मा दिख पड़ता है न, कोई आत्मा का अनुभव होता है, पता नहीं लगता था ये सब बकवास है, मैं कहां इस उलझन में पड़ गया, छोड़ दूं, ऐसा लगता था। तब मुझे उस चोर का ख्याल आता था, साधारण सी संपदा को चुराने गया। उसका निश्चय भगवान ने क्या कहा, कहा कि जिसका निश्चय पक्का है, भगवान कहते हैं कि जिसका निश्चय पक्का हो, सभी प्रकार बड़ी प्रकार निश्चय जिसने कर लिया है, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही वा, सम्यक व्यवस्थितो यथार्थ निश्चय वाला, चोर का अपना निश्चय पक्का है, क्योंकि उसने निश्चय, हमारा निश्चय डावाडोल है, पूछो अपने आपको तलाशो। मुझे उस दिन ज्ञात हुआ, मैंने जिस दिन उस अल्लाह के नूर को देखा, मैंने उस अल्लाह की रहम की अनुभूति की, मैंने अल्लाह की उपस्थिति का एक सुंदर प्रकाश देखा, मैंने उस चोर को धन्यवाद दिया। वो मेरा असली गुरु है हजरत हुसैन, कि जिनके शिष्यों ने उनको पूछा था तुम्हारा असली गुरु कौन, मैंने कहा चोर है मेरा गुरु। दरअसल निश्चय का अर्थ है पूरे प्राण से आत्मसात कर लो, टोटल। ये मैंने सुना हूं, ये आपके गॉर्डन रोड क्या कहते हैं वहां से, ये निपेंसी में जाते मुकेश चौक के अंदर प्रवेश करने के साथ में बाएं हाथ में एक पुरानी कोठी है। चौतर से मैं उस कोठी में देख रहा हूं, एक छोटा लड़का हुआ करता था, उसको सांप पालने का बड़ा शौक था, तो 50 तरह के वो सांप रखता था। कभी भी मैं बंबई में आया तो जरूर जाके उसके सांप को देखता था। तो मेरे भी गले में एक सांप लटका, फोटो खींच दे, बड़े बड़े सांप हुआ करते थे, फोटो भी खींचाई हमने, साधु बनने के बाद भी खींचाई। सांप इतना बड़ा अजगर है तो मेरे को सांप पकड़ने दे। अभी वो वहां पर मकान खाली है, तो मैंने कहा क्या? बोले 500 करोड़ में ये कोठी बिकी है। जो 500 करोड़ की कोठी है तो क्या वो आपको 5 करोड़ में देगा क्या? बोलो। वो 50 करोड़ में भी नहीं देगा। टोटल जिस माल को चाहते हो तो उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज आधी दो, दो चार दिन में आधी दो, किंतु देनी तो पूरी ही पड़ेगी। परमात्मा को चाहते हो तो पूर्ण है, पूर्ण मद अपूर्ण मिदम, वो अपूर्ण नहीं है, वो पूरा सत्स्वरूप है, वो चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अखंड है, एक अनंत अखंड अनादि जीवन के अवलंबन है। वो प्रेम सुधारस का मालिक, उसकी प्राप्ति के लिए आधा अधूरा नहीं चलता है। प्राण इतने आत्मसात हो, हार हो जीत हो, सफलता असफलता निर्णय नहीं बदलेगा, दृढ़ निश्चय। चाहे असफलता मिले चाहे सफलता मिले, मुझे पता नहीं मैंने आपको कहा कि नहीं, हाँ, ये जो जो लोग स्कीइंग करते हैं ना, स्कीइंग, वो स्कीइंग जो करते हैं बर्फ में करते हैं, झूम करके जाते हैं वो, तो एक दिन वो हमारे यहां जहां पर बद्रीनारायण जाए तो वहां रास्ते में स्कीइंग का एक बहुत बड़ा जोली ऐसा वो स्कीइंग स्थान है, तो वहां हमको लोग ले गए, स्वामी जी आइए। देखा एक छोटा बच्चा है, एक ना 10-12 साल का, वो इतनी बढ़िया स्कीइंग कर रहा है। हमारे साथ में गोलम्ब हैरी गए हुए थे और स्विस जर्मन सज्जन, वो दुनिया के श्रेष्ठ स्कीइंग पर्सोना है। वो बोले तू इतना कैसे सीखा? तो जितनी बार गिर गया इतनी बार खड़ा होकर के फिर दौड़ने लग गया। ये चाबी है, जितनी बार गिर गया उतनी बार फिर खड़ा होकर के चलना चालू हो गया। ये महिलाएं जो स्वेटर बुनती है ना, स्वेटर, तो कहते हैं बंबई में तो लोग बुनते कि नहीं मुझे पता नहीं, लुधियाने में, जलंधर में, अमृतसर में सत्संग होता है और एक साल ना जाओ ना तो माताएं बड़ी कमरे, महात्मा जी तुसी पिछले साल नहीं ना आया करो जी, तो क्या बात है समझी, 3-4 घंटा सत्संग सुनाते हो ना, मैं तो 2 स्वेटर बुन लेती है। वो एक सिलाई में फंदा डालो इनका कितना लगेगा? बोलते 48 फंदा लगेगा। एक पहली सिलाई में 48 फंदा डालना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो एक मिनट में डल जाएंगे। इसको यहां से निकालना भी मुश्किल नहीं है, किंतु दूसरे में से तीसरे में निकालने में 1 घंटा लग जाएगा पहली बार अगर किया तो। और बाद में वो सत्संग सुनती रहती, उनको पता है 6 सीधे 8 उल्टे, 6 सीधे 8 उल्टे, और गले में जो फैशन देनी है तो देख लेती है कितना गया है, फिर सीधा कर लेती है। पूरी कथा सत्संग सुनते हुए अंधेरे में भी उसको देखना पड़ता नहीं कि सिलाई कहां है। वो अर्जुन जो है वो अंधेरे में तीर मारता था और वो भीम जो है अंधेरे बैठ के खाता था। बोले कैसे खाता है? बोले मेरा जो निवाले मुंह में ही जाता है, आंख कान में नहीं। अभ्यास चाहिए आपको, चाहिए अभ्यास, चाहिए अभ्यास से कुछ भी असंभव नहीं है, अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं हमारे मन के अंदर में, कृष्ण कहते हैं दृढ़ निश्चय साधुता का लक्षण है। फिर वो चोर के रूप में साधु है कि साधु के रूप में साधु, वो गलत दूसरी बात है, दृढ़ निश्चय है कि नहीं ये अत्यंत आवश्यक है। ध्यान रहे कि दुराचरण का मौलिक कारण क्या है। सदाचरण की आकांक्षा सभी में उत्पन्न हो सकती है लेकिन निश्चय ही कभी दृढ़ नहीं हो पाता, तो दुराचरण पैदा हो जाता है। When you are not clear, the concept is not clear, the cognition is not clear, perception is not clear, you don't know what to do. ये कैरो, कैरो हैं, हमने आप लोगों ने नाम सुना होगा कैरो, जिन्होंने ये चंडीगढ़ बनाया, तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे आईसी पुरी, और बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे। तो इवन ही वॉज ए यंग मैन, लोग जलंधर से चंडीगढ़ आ रहे थे, रास्ता पूरा सीधा है, तो एक नेवला है बीच में आया और कट गया। पुरस्ता उन दिनों में भी तो इतना 40 फीट 32 फीट तो चौड़ा होगा ही होगा, नेवला कट गया। ओ आईसी पूरी आगे बैठे हैं, केरो साहब पीछे बैठे हैं, तो केरो साहब मतलब पूरी दस, ओ क्यों मोया दस, ये प्राणी क्यों मर गया बोल। आईसी पूरी बड़े फिलोसोफर रहे, उन्होंने कहा उदा करम सी जी, बताया वो अपने कर्म से मरा। तो उन्होंने जोर से मार दिया, ओए तू आईएस पढ़ा है धर्म करता है, तू आईएस पढ़ा है कि धर्म की कथा कर रहा है, उदा कर्म से मरा। इज अ क्वेश्चन ऑफ इंडिसीजन, द कैरो सेड सो लाइक दैट। ये जो नेवला है वो 32 फुट के रास्ते में ठीक आधे तक आया, आया तो 16 फुट कट गया। फिर सोच रहे आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, थोड़ा पीछे चला गया, कहां गया 8 फीट। फिर 8 फीट में फिर खड़ा हो गया, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, थोड़ा आगे चला गया, फिर रास्ते के बीच में ही था। कुल मिलाकर तो बस 32 फीट चला है, 16 आगे 8 पीछे 8 आगे, मिला करके 32 फीट चला, किंतु रास्ते के बीच में और कट गया। इज एन इंडिसीजन। जिनके जीवन डावाडोल है, जो अपने आप को निर्णय नहीं कर सकते मैं कहां जाऊं, अरे तू जा कूद पड़। सवेरे सवेरे एक माई आई आकर के मेरे को बोल रही है कि बहुत दिन से मैं सोच रही हूं कि जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि कहां जाना है, नड़ियाद में ना सूरत में कहीं पर वो मोटा का मंदिर है ना मौन मंदिर, वहां जाने के लिए। तो देखिए ये पहले से टिकट बनाना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, तो हम क्या करें। हमने कहा कब तक करती रहोगी, तब बाल सारे चिट्टे हो गए, सफेद बाल हो गए, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, कूद पड़। हां शांते तो समुद्र कल्लोले स्नातुम इच्छति दुर्मति, समुद्र के किनारे खड़ा होकर के जब समुद्र में पानी है, आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, वो बंद हो जाएगा तब मैं नहाऊंगा, कभी नहीं नहा सकते, कूद पड़ो उसमें। अपने जीवन में क्या करते हो, हाँ पूरा जीवन बीत गया निर्णय करते करते, क्या बोलते हैं उनको, इष्टापूर्ते पूर्त कहते हैं। 80 साल की उम्र हो गए, लोग आकर हमको पूछते स्वामी जी अमे छे महादेव नो जप करिए, क्या मैं तो ब्राह्मण ने एटले, पण मारा बा छे ने मोटी बा, मार दादी स्वामीनारायण ना था के, पण मारी पोतानी बा तो वैष्णव पुष्टावली सेवा वाली के, पण मारा बापा तो महादेव ना ने एटले महादेव अमे करिए, पण मने आम छे ने मुरारी बापू मां रस गण हो के, तो हवे अमे के पूजा कोनी करिए। मैं कीधु के रमेश मारो धणी छे, कमलेश मने गमे छे, सुरेश ने जोईने हूँ मरी मरी पड़ू छू, ने विलियम ने जोईने लागे के हाय केटलो सरस छे, तो एने केम कहेवाय, मने कीधुं वेश्यावृत्ति कहेवाय, आए वेश्यावृत्ति कहेवाय। 80 साल तक हम निर्णय नहीं कर पाए कि ईश्वर के किस स्वरूप को हम पूजे। नहीं नहीं अमे ब्राह्मण ने एटले अमारे तो के एम के पछी छे ने के अमारे जनोय होय एटले के गायत्री तो करवी करने बा, विथ इज अ प्रॉब्लम, मुश्किल नहीं है करो। एक लड़की जब तक स्कूल में पढ़ती है कॉलेज में पढ़ती है, हर लड़कों के साल में उछलती है कूदती है, सिनेमा जाती है, नाटक जाती है, ड्रामा करती है, रास करती है, गरबा करती है, पिकनिक करती है, किंतु जिस दिन उसके हाथ में हाथ रख दिया, बस ये मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूं, खत्म, बात पूरी हो गई। फिर उसके घर में तमाम पति के दोस्त आए, अपने दोस्त आए, समारे संबंधी, उनको बेडरूम बना दो, खाना दो, गर्म पानी दो, ठंडा पानी दो, किंतु मेरे बेडरूम में कोई नहीं जाएगा मेरे पति के सिवा। अब तुमको दूसरों की शादियों में जाने का अधिकार है, तुम हाथ में मेहंदी रचा लो, चूड़ियां पहन लो, नाच भी करो, तुतक तूतिया ऐजमा लो, कोई मुश्किल बात नहीं है, किंतु फिर से किसके हाथ में हाथ पकड़ करके फेरा फरने का तुम्हें अधिकार नहीं है। तमाम संतों को सुनो, तमाम मंदिरों में जाओ, तमाम को प्रणाम करो, तमाम को अपने घर में बुलाकर सम्मान करो, किंतु मेरा गुरु तो एक ही हो सकता है, मेरा इष्ट तो एक ही हो सकता है, एक ही गुरु को एक ही इष्ट को मानो, बेईमानी उसमें मत करो। कृष्ण कहते हैं हमारी बेईमानी बढ़ गई है, हमारी साधुता है वो असुधा के असाधुता है, उसके ऊपर में एक नया कलर हमने चढ़ा दिया है, ऐसे मत करो। हमारे मन में पता नहीं कितनी आवाजें चलती रहती है, रोज बिखर जाते हैं हमारे आवाज, इसके अंदर में हमने भीतर की आवाज को कभी हमने सुना नहीं है। हम चाहें कि हम करें, मन में एक निर्णय करो, जब एक निर्णय हो जाएगा तब कोई भी बात मुश्किल नहीं है। किंतु काफी लोग ऐसा बोलते हैं, स्वामी जी 25 बार तो मैं जन के माओ खावानो छोड़ी दीतू के, अबे तो छोड़वानो छोड़ी दीतू के। क्या मतलब क्या हुआ है? 25 दफे मैंने व्रत लिया हूं कि मैं ये पान तमाकू मसाला घिसला नहीं खाऊंगा, अब 25 दफे छोड़ा, अब छोड़ने का ही छोड़ दिया, उपाय नहीं है। जब तक आपको लगी नहीं है, भीतर से लगन लगी, बड़ा मुश्किल है। देखिए क्या करें, तो इसके लिए क्या करना है, प्रयत्न करो, छोटे छोटे निर्णय लो। जैसे कि तिब्बत में जो साधु होते ना, दलाई लामा जी से हमारा बहुत प्रेम है, उनके आश्रम में जाएं तो हम भी कुछ सीखने के लिए कोशिश करते हैं। उनका नियम है, क्या करते हैं, वो कहते हैं दरवाजे के पास बैठ, जो गेट है गुरु के दरवाजे पर बैठ जा, कितना आंख बंद करके बैठ, जब तक गुरु तुमसे नहीं कहे उठना भी नहीं और आंखें खोलना नहीं, करके देख लेना आज। हाँ, मैं आज जब तक कोई मुझे नहीं बुलाएगा यहां से उठने के लिए, तो तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगा, आंख नहीं खोलूंगा। एक घंटा है, दो घंटा है, तीन घंटा है, हो सकता है क्या 5 मिनट में 15 दफे आंख खोल के देख लेंगे कितना घंटा हुआ। कोई नहीं तो अपने ही सोच लो, आज मुझे 1 घंटा ध्यान करना है, 1 घंटा आंख मूंद करके स्थिर बैठते हो क्या, पूछो। बीच में विचार क्या आया उसको तो छोड़ दो, सोच लो कि मैं आज शुक्रवार है, हर शुक्रवार को खटाई नहीं खाएंगे, हर गुरुवार को नमक नहीं खाएंगे, हर बुधवार को चीनी नहीं खाएंगे, इतवार को खाली पानी ही पिएंगे। कोशिश करके देखो ये क्या होता है, इससे मन के ऊपर अतिक्रमण होता है, मन में एक नियम होता है, मन में एक अनुशासन होता है। आज प्रातः काल सूर्य उदय से सूर्य अस्त पर्यंत मैं नहीं बोलूं, लेट एनीथिंग में हैपन, फोन नहीं चाहिए, नहीं बोलूं का मतलब क्या है, जब मौन रखूं तो लिख के दूंगा, नहीं लिख के भी नहीं देना है, अखबार पढ़ूंगा, टीवी देखूंगा, नहीं चुप से बैठूंगा, शांत बैठूंगा, बाहर तो नहीं बोलूंगा, भौतिक अंदर भी नहीं बोलूंगा, अपने आप को टटोलो, मुश्किल नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि अनीति क्या होती है, नीति क्या है, वो बोले मैं तो सब जगह में प्रसन्न हूं, मैं प्रकट तो हर तरफ से हूं, किंतु तुम्हारा जीवन जो है वो मेरे पास में तो आए। कृष्ण कहते हैं वक्त में अगर वे होते हैं कि एक सूत्र में कहा कि उन्होंने कहा है कौंतेय, उनके दिमाग के स्क्रू ढीले। मैं बताऊं क्या बात है, हम लोग जो चर्चाएं करते हैं, हम लोग जो ये प्रश्न पूछते रहते हैं, हम लोग की जो अवस्थाएं होती है, तो उन अवस्था को देखना। कृष्ण ने क्या कहा कि पहाड़ों में मैं हूं, नदियों में मैं हूं, सूर्य में मैं हूं, चंद्र में मैं हूं, पेड़ों में मैं हूं। अगर हमारे जो उल्टे सीधे प्रश्न है ना, तो वो कृष्ण अगर इस अवस्था में आजकल में आते थे तो कृष्ण एक नई बात, एक नया श्लोक, नया तुक जोड़ देते थे, जिनके दिमाग के स्क्रू ढीले उनमें भी मैं हूं बोल सकते थे वो, क्योंकि कृष्ण ऐसे क्या कहना है, छिपा हुआ पड़ता, अपने आप को टटोलते नहीं, हमने दूसरों को देखने की कोशिश करते, तुम अपने आप को देखने की कोशिश करो। क्या बात है, मुश्किल नहीं है। धार्मिक आदमी का लक्षण क्या है, धार्मिक आदमी का लक्षण है वो अपने को देखता है, और अपने भीतर जो परमात्मा है उसी को वो सब जगह देखता है, वो देखने लग जाता है, तब जाकर के उसमें कोई राग द्वेष काम क्रोध लोभ छल मोह कपट नहीं होते, वो अंदर बाहर शुद्ध हो जाता है। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा ने क्या कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति, तो वह शाश्वत शांति को प्राप्त कर, कौंतेय प्रति जानी, क्या कहा है, नमे भक्त प्रणश्यति, जिसने संपूर्ण शरणागति मेरी स्वीकार कर ली है वह भक्त कभी भी दुखी नहीं होता है। ओम शांति। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद, आपके भीतर विराजित परमात्मा को प्रणाम, परमात्मा सभी का मंगल करे, शुभ करे। ओम नमो नारायण।